लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है वैटिकन में खजूर रविवार की धर्म विधि, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 24 मार्च को पोप फ्रांसिस ने करीब 60,000 विश्वासियों के साथ बड़े समारोह ढंग से खजूर रविवार की धर्म विधि सम्पन्न की।
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में खुले आसमान के नीचे सुनहरी धूप में विश्वासी समुदाय के साथ पूर्वाह्न 10 बजे पोप फ्रांसिस के नेतृत्व में खजूर रविवार की धर्म विधि शुरू हुई। आशीष के बाद कलात्मक ढंग से सजे खजूर की पीली डालियों और जैतून की हरी टहनियों को हाथ में लिए होसन्ना दाऊद के पुत्र को होसन्ना गाते हुए विश्वासियों ने जुलूस में भाग लिया और प्रभु येसु के यरूशलेम में भव्य प्रवेश की यादगारी मनाई। चार सौ से अधिक कार्डिनल, धर्माध्यक्ष और पुरोहित खजूर की डालियां लेकर जुलूस में आगे चल रहे थे और उनके पीछे बाकी लोग जैतून की डालियां लिए हुए थे। जुलूस करते हुए याजक वर्ग वेदी की ओर बढ़े जबकि विश्वासी समुदाय सामने लगी कुर्सियों में अपनी जगह ली। जुलूस के बाद दुखभोग वृतांत का पाठ हुआ।
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Marco.
धर्म विधि को आगे बढ़ाते हुए दो पाठ पढ़े जाने के बाद संत मार्कुस रचित सुसमाचार पाठ से प्रभु के दुखभोग वृतांत का पाठ प्रस्तुत किया गया। तीन पुरोहितों ने पूरे वृतांत को गाते हुए प्रस्तुत किया।
Al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto con...
विश्वासी समुदाय ने भक्ति पूर्वक प्रभु के दुखभोग पर चिंतन करते हुए प्रभु की मृत्यु में घुटनी टेककर मौन सहभागिता दिखाई। यह ख्रिस्त की पीड़ा है जिसमें हर युग और हर मनुष्य का दर्द शामिल है। इन्हीं कमजोरियों के साथ विश्वासों की प्रार्थना में विश्व की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना की गई।
Fratelli e sorelle, contemplando il mistero della passione del Signore, poniamo sotto lo sguardo del Padre misericordioso l'umanità intera con le sue fragilità.
कलीसिया के लिए प्रार्थना ताकि वह हमेशा एकता, मेल मिलाप और एकजुटता की तलाश कर सके। शासकों के लिए प्रार्थना कि वे शांति लाने में कामयाब हो सकें और लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें। पीड़ित पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रार्थना, सताए गए ख्रिस्तों के लिए एवं प्रत्येक ख्रिस्त समुदाय के लिए प्रार्थना ताकि वे प्रार्थना एवं परोपकार में अपने विश्वास का साक्ष्य दे सकें। इस तरह शब्द समारोह समाप्त हुआ।
Ascolta e saudisci, o Padre, le nostre preghiere e nella tua misericordia rendici discepoli del tuo figlio, segni viventi del tuo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
मिस्सा बलिदान के अंत में देवदूत प्रार्थना का पाठ करने से पहले पोप ने विभिन्न समुदायों की याद की। उन्होंने कहा,
cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alla comunità San José de Apartado en Colombia.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं कोलंबिया में सन जोस डी अपरतादो समुदाय के प्रति अपनी निकटता व्यक्त करता हूं, जहां कुछ दिन पहले एक युवा महिला और एक लड़के की हत्या कर दी गई। इस समुदाय को 2018 में आर्थिक एकजुटता, शांति और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता के उदाहरण के रूप में सम्मानित किया गया था। उसके बाद मॉस्को में आतंकवादी हमले में मौत के शिकार लोगों के प्रति दुख व्यक्त करते हुए संत पापा ने कहा,
Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l'altra sera a Mosca.
मैं पिछली शाम मॉस्को में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के शिकार लोगों के लिए अपनी प्रार्थना का आश्वासन देता हूं। प्रभु अपने शांति से मृतकों का स्वागत करें और उनके परिवारों को सांत्वना प्रदान करें। वे उन लोगों के दिलों को बदल दें जो इन अमानवीय कार्यों की योजना बनाते, व्यवस्थित करते और अंजाम देते हैं। संत पापा ने कहा, यह ईश्वर को अपमानित करता है जिन्होंने आदेश दिया था हत्या मत करो। तत्पश्चात संत पापा ने रोम के विश्वासियों एवं विभिन्न देशों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया।
Saluto tutti voi fedeli di Roma, pellegrini di vari paesi.
उसके बाद युद्धग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा,
Cari fratelli e sorelle, Gesù è entrato in Gerusalemme come re umile e pacifico.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, येसु ने एक विनम्र एवं शांतिपूर्ण राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया। आइए हम उनके लिए अपना हृदय खोलें। केवल वे ही हमें दुष्टता, घृणा और हिंसा से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे दयालु हैं और पापों को क्षमा करते हैं। आइए हम उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें जो युद्ध के कारण दुख झेल रहे हैं। विशेष रूप से मैं पीड़ित यूक्रेन की याद करता हूँ, जहां बहुत सारे लोग बिना बिजली के रह रहे हैं, क्योंकि बुनियादी ढांचों पर अत्यधिक हमले हुए हैं। मृत्यु और पीड़ा के अलावा इससे भी बड़ी मानवीय तबाही का खतरा है। कृपया हम पीड़ित यूक्रेन को ना भूलें और आइए हम गजा के बारे सोचें जो बहुत अधिक नुकसान झेल रहा है। साथ ही हम युद्धग्रस्त अन्य जगहों की भी याद करें। तत्पश्चात माता मरियम से प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा,
E ora ci rivolgiamo in preghiera alla Vergine Maria. Impariamo da lei stare vicino a Gesù nei giorni della Settimana Santa per arrivare alla gioia della resurrezione.
और अब आइए हम माता मरियम से प्रार्थना करें, हम उनसे इस पुण्य सप्ताह में यीशु के नजदीक रहना सीख सकें, ताकि हम पुनरुत्थान के आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। इतना कहने के बाद संत पापा ने देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini, non siavi Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedito frutto venti tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedito frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis.
और अंत में उन्होंने अपनी खुली कार पर सवार होकर विश्वासों के बीच जाकर उनका अभिवादन किया।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पापा पॉल सिस्टम सभागार में रोम में रहने वाले नाइजीरिया के करीब 800 कैथलिकों का स्वागत किया, जो रोम में नाइजीरियाई कैथलिक समुदाय की उपस्थिति के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। संत पापा ने कहा, आज की तारीख 25 मार्च कई वजहों से अहम है। आम तौर पर यह प्रभु के शरीर धारण के संदेश का उत्सव है, हालांकि इस वर्ष पवित्र सप्ताह के कारण प्रभु के शरीर धारण संदेश के समारोह को दूसरे दिन स्थानांतरित कर दिया गया है। ये दो वास्तविकताएं अर्थात प्रभु का शरीर धारण और बचाने वाले रहस्य, जिन्हें हम पवित्र सप्ताह के दौरान स्मरण करते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, जीवित रहा, मरा और ईश्वर और महिमा के बीच मेल मिलाप और शांति लाने के लिए फिर से जी उठा। सचमुच प्रभु ने हमें अपना जीवन दिया है। तब संत पापा फ्रांसिस ने समुदाय के जीवन के लिए महत्वपूर्ण तीन तत्वों पर विचार किया, कृतज्ञता, विविधता में समृद्धि और संवाद। संत पापा ने उन्हें सुसमाचार के आनंददायक संदेश की गवाही देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा, आप हमेशा मिशनरी शिष्य बने रहें, कृतज्ञ बने रहें कि प्रभु ने आपको उनका अनुसरण करने के लिए चुना है और आपको उत्साह के साथ हमारे विश्वास का प्रचार करने और एक अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय दुनिया के निर्माण में योगदान देने के लिए भेजा है। आगे संत पापा ने कहा कि उनके देश में जातीयताओं, सांस्कृतिक परंपराओं और भाषाओं की विविधता कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक उपहार है जो कलीसिया और बड़े समाज दोनों के ताने बाने को समृद्ध करती है और आपसी समझ सह अस्तित्व के मूल्यों को बढ़ावा देती है। संत पापा ने अपनी आशा व्यक्त करते हुए कहा, रोम में आपका समुदाय नाइजीरियाई विश्वासियों और अन्य विश्वासियों का स्वागत करने और उनके साथ रहने में हमेशा एक महान और समावेशी परिवार जैसा होगा, जिसमें सभी अपने विभिन्न उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग कर सकते हैं। संत पापा ने कहा, खुशी और दुख, सफलता और कठिनाई के क्षणों में एक दूसरे का समर्थन करें और उन्हें मजबूत करें। ऐसा करके आप वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए सामाजिक मित्रता और सौहार्द के बीज बो सकेंगे। उधर प्रेरितिक उद्बोधन क्रिस्तुस विवित, मसीह जीवित है की 5वीं वर्षगांठ पर संत पापा फ्रांसिस ने युवाओं के लिए संदेश दिया। उन्होंने कहा, मसीह जीवित है और वे चाहते हैं कि आप भी जीवित रहें। सबसे बढ़कर मैं चाहूंगा कि मेरे शब्द आपके लिए नई आशा का स्रोत बने। आज की दुनिया में इतने सारे संघर्ष और बहुत सारी पीड़ाएं हैं। मुझे संदेह है कि आप में से कई लोग निराश महसूस करते हैं, इसलिए आपके साथ मिलकर मैं उस उद्घोषणा को आगे बढ़ाना चाहता हूं जो हमारी और पूरी मानवता की आशा का आधार है। मसीह जीवित हैं और वे आपसे प्रेम करते हैं। आपके प्रति उसका प्यार आपकी सफलताओं या गलतियों से प्रभावित नहीं होता है। उसने आपके लिए अपना जीवन दे दिया, इसलिए आपके प्रति अपने प्यार में वह आपके पूर्ण होने का इंतजार नहीं करते। क्रूस पर फैली उसकी भुजाओं को देखें और अपने आप को बारंबार बचाए रखें। केवल इस तरह उनकी उपस्थिति के प्रकाश में अतीत की आपकी स्मृति उपयोगी साबित होगी। आप वर्तमान में साहस पाएंगे और आशा के साथ भविष्य का सामना करने के लिए तैयार होंगे। आपको अपने परिवारों को, अपने दादा दादी, अपने माता पिता, अपने देश की धार्मिक परंपराओं के इतिहास को आगे बढ़ाने और बदले में कल के नेता, भविष्य के कारीगर बनने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता मिलेगी। संत पापा ने कहा, आप गतिशील कलीसिया के जीवित आशा हैं। इस कारण से मैं आपके योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं और आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप हमें गड़बड़ करने के अपने अच्छे तरीके, एक साफ और अच्छी तरह से ट्यून किए गए इंजन की तरह अपनी ड्राइव और जीने के अपने विशेष तरीके और पुनर्जीवित येसु की खुशी की घोषणा करना कभी न छोड़ें। उधर संत प्रकरण के लिए गठित परिषद के प्रीफेक्ट कार्डिनल मार्सेलो सेमेरारो ने धन्य उल्मा परिवार की शहादत की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान किया, जिनकी यहूदियों को आश्रय देने के लिए नाजी जर्मन सैनिकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। अपने उपदेश में कार्डिनल सेमेरारो ने मार्कोवा के समारी लोगों के जीवन में पैदा हुए सुसमाचार संदेश की प्रासंगिकता को याद किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धन्य उल्मा परिवार के सदस्यों ने प्रदर्शित किया कि प्रेम की शक्ति मृत्यु की शक्ति से कहीं अधिक महान है। हम अपने परिवारों को धन्य जोसेफ विक्टोरिया और उनके साथ बच्चों की मध्यस्थता में सौंपते हैं, ताकि हमारा परिवार विश्वास का स्कूल और अभ्यास करने एवं सच्चे प्यार में बढ़ने का स्थान बन सके। आइए हम लोगों और राष्ट्रों के बीच शांति और सार्वभौमिक भाईचारे के लिए प्रार्थना करें। पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने पवित्र मिस्सा समारोह में भाग लिया और पिछले साल उल्मा परिवार को धन्य घोषित करने के उपहार के लिए संत पापा फ्रांसिस को धन्यवाद दिया। उन्होंने याद किया कि 24 मार्च 1944 की हत्या के बावजूद मार्कोवा में अन्य पोलिश परिवारों द्वारा छिपाए गए 21 यहूदी युद्ध से बचने में कामयाब रहे। धन्य उल्मा परिवार को एक प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि के रूप में रविवार की सुबह रेज्जो जेसोन का हवाई अड्डे का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। उधर सेनेगल में रविवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए 70 लाख मतदाताओं ने मतदान की, जिससे कई लोगों की उम्मीद है कि इससे देश में कुछ स्थिरता बहाल होगी। चुनाव मूल रूप से पिछले महीने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन चुनाव शुरू होने के कुछ घंटे पहले फरवरी की शुरुआत में निवर्तमान राष्ट्रपति माइकी सॉल द्वारा अचानक इसमें देरी कर दी गई थी। इस निर्णय से हिंसा की लहर फैल गई और सैद्धांतिक परिषद को मतदान में देरी करने और राष्ट्रपति सोल के जनादेश को अप्रैल से आगे बढ़ाने के प्रयासों से इनकार करना पड़ा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।